जिन पिछड़े हमारी पुण्य पाप अधिकार समापन की ओर है और पूरे पुण्य पाप अधिकार का सार यदि एक लाइन में कहना हो तो इस रूप में कहा जा सकता है कि शुभ भाव दोष है और शुभ भाव को धर्म मानना, मुक्ति का मार्ग मानना ये अपराध है। दोष क्षमा हो सकते हैं, अपराध में क्षमा के लिए कोई जगह नहीं होती। भारतीय कानून की में भी ये बात है, जो फौजदारी केस होते हैं ना, उसमें समझौता नहीं होता, और दीवानी केस होते हैं उनमें समझौता हो सकता है। शायद ये बात आपके ख्याल में नहीं आई होगी क्या कह रहा हूं मैं। किसी ने किसी से कुछ पैसे लिए और अब वो नहीं दे रहा है, केस कर दिया है, चल रहा है, और वे बाद में आपस में समझौता कर लें। वो समझौता क्या हो कि पूरे पैसे वो दे दे, आधे पैसे दे दे, एक भी पैसा नहीं दे, लेकिन दोनों राजी हो जाएं कि अब हमको केस नहीं चलाना है, तो अदालत में एप्लीकेशन देंगे तो केस वापस हो जाएगा। अदालत ये नहीं पूछेगी कि तुमने कितने कितने में समझौता किया, और वो तो इतना जानना चाहते समझौता हो गया। सारी समाज अदालत है और वो तो ये जानना चाहती है कि आप झगड़ा खत्म हो गया, भाई बात क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये वो नहीं, उसे नहीं जानना है। लेकिन फौजदारी केस में नहीं होता, कोई ने किसी को मारा, हत्या की, और फिर वो कहे कि हमने समझौता कर लिया, तो उसमें एक नया अपराध और हो जाएगा कि तुमने उसको धमका के, डरा के, लोभ देकर क्या ये गड़बड़ की है, तो एक नया अपराध और तुम पर होगा, और उस केस को पुलिस चलाती है। जिस आदमी की पिटाई हुई है उसे चलाने की जरूरत नहीं है, भले ही वो एक पार्टी बने, अपना वकील रख दे, पुलिस पे भरोसा ना हो तो, लेकिन वो कुछ भी ना करे तब भी पुलिस चलाती है, क्योंकि वो अपराध है, वो दोष नहीं है। शुभभाव होता तो दसवें गुण स्थान तक है, जिसको शुद्धोपयोग का काल कहा जाता है। शास्त्रों में कहें तो शुक्ल ध्यान का काल है, लेकिन जो सूक्ष्म राग रह जाता है वो शुभ भावी रूप तो होगा, वहां भी शुभ भाव विद्यमान है, लेकिन उसने कुछ रोका नहीं, आगे बढ़ती गई गाड़ी, आगे बढ़ती गई। लेकिन वो जो दसवें गुण स्थान में राग है, शुभ राग है, उसको भी धर्म माने तो पहले से ऊपर नहीं निकल सकता। अब इतनी सी बात लोगों की समझ में नहीं आती, या तो बस राग होने ही नहीं चाहिए और होना चाहिए तो उसे धर्म मानना चाहिए, मान्यता के लेवल पर भी दोनों तरफ से आते हैं। उसके बीच में जो सूक्ष्म रेखा है संधि की, वो हमारी समझ में नहीं आती, और पूरा पुण्य पाप अधिकार सिर्फ इस बात को बताने के लिए समर्पित है। वो आपका समय सार आपको अपराध छुड़ाने के लिए लिखा गया है, दोष छुड़ाने के लिए नहीं। दोष छुड़ाने के लिए नियम सार है, रतन सार की चरणानी योग सूचक चूलिका है, और बहुत बहुत ग्रंथ है, भगवती आराधना है, वो ग्रंथ है। ये तो अपराध वृत्ति के निषेध के लिए एक ग्रंथ लिखा गया, इसलिए यहाँ जगह जगह उसी बात पर यहाँ वजन दिया गया है। यहाँ उसकी बात ही नहीं है कि वो कितना राग है और कितना नहीं है, पर वो रंत वो कोई भी राग उसमें धर्म बुद्धि उसे उपादेय मानना, हे नहीं मानना, ये छुड़ाने के लिए ये पूरा प्रकरण है, ये इसका सार है। देखो गुरुदेव श्री का जो कोटेशन है वो अपन पढ़ते हैं, पेज नंबर 382 नीचे की 3 पंक्तियां। इस कलश में कर्म नय व ज्ञान नय का अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों नयों के पक्षपातियों को अज्ञानी कहा है, क्योंकि कर्म नय का पक्षपाती शुभ क्रिया में अटका है, वह शुभ क्रिया को ही अपना कर्म यानी कर्तव्य मान बैठा है, एवं ज्ञान नय का पक्षपाती बातें तो बड़ी बड़ी करता है किंतु जीवन में स्वच्छंदतया बरतता है, एक जड़ क्रिया में मगन है और दूसरा स्वच्छंदता के पोषण में मगन है। अब हम क्या करने लगते हैं कि इन दोनों में बड़ा अपराधी कौन है, माने हम दोनों अपराधी हैं, अब छोटे बड़े से क्या फर्क पड़ता है, हम फिर इसमें उलझ जाते हैं क्या, क्या वो निश्चयवादी जो स्वच्छंद है वो बड़ा अपराधी है कि जो क्रिया कांड में मगन है वो बड़ा अपराधी है। टोडरमल जी ने तो एक जगह लिख दिया है कि निश्चयवादी ज्यादा खतरनाक है व्यवहारवादी से, क्योंकि इसमें इसको नरक में जाने के चांस हैं और उसको स्वर्ग में जाने के चांस हैं, क्योंकि वो शुभ क्रिया और शुभ राग में रहेगा, उसे उपादेय मानेगा तो पाप प्रवृत्ति से पाप भावों से बचेगा तो देवगति का बंद होगा, तो ये तो स्वच्छंद होकर के 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तता है, आत्मा तो दोनों में से किसी को नहीं मिला है, इसलिए इसमें नरक में जाने की चांस ज्यादा है। फिर वहीं पर टोलरमल जी ये भी लिख देते क्या फर्क पड़ेगा, स्वर्ग में नहीं नरक में ही जाएगा, लेकिन रहेगा तो संसार का संसार में ही, मुक्ति के मार्ग में तो नहीं आएगा, वो ये भी लिख देते हैं। अब तुमसे तो अच्छे हम तो अच्छे तुम, जो बिल्कुल ऐसी बात है कि जहर खा के मरना अच्छा रहेगा कि कुएं में कूद के मरना अच्छा रहेगा, अब इस पर बहस चल रही है, तो उसमें तकलीफ कम होगी इसमें कम होगी ज्यादा होगी इसमें आएगी, देखिए यहाँ तो नहीं मरने की बात आपसे कहना चाहते हैं, तो मुक्ति के मार्ग ये दोनों मुक्ति के मार्ग नहीं है नहीं है नहीं है, बस खत्म, इतनी सी बात स्वीकार कर लो। प्राचार्य कहते हैं हमारी इतनी मेहनत समझ में नहीं करने किया, एक देखे तो झुंझलाकर आचार्य कहते हैं इत्यलम अलम अथवा प्रलपते ने, प्रतंसार की 80वीं गाथा में अमृतंदाचार्य कहते हैं पर ये बहुत हो गया, अब अधिक बकने से क्या फायदा, ऐसा लिखा, क्योंकि हिंदी अनुवाद करो ना सही भाषा में, प्रलपते ने प्रलाप करने से क्या फायदा है, काय के लिए कह रहे थे, जो खुद अमृतंदाचार्य हमें आपको समझा रहे थे ना वे उसी को प्रलाप कह रहे हैं, तो प्रलाप है वो तो किया कर क्यों रहे थे, वो कहते भैया यदि तुम समझ जाते तो वो सुलाप हो जाता, उसका प्रलाप तो वो इसलिए है कि तुमने समझे नहीं, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सामने वाले समझने वाले नहीं है, इसलिए अलम अथवा प्रलपते ने अधिक क्या कहें, अधिक बकने से क्या फायदा है, ऐसा लिख देते हैं। देखो अपने गुरुदेव का पढ़ रहे थे ना, दोनों नयों के पक्षपातियों को अज्ञानी कहा है, क्योंकि कर्म नय का पक्षपाती शुभ क्रिया में अटका है, वह शुभ क्रिया को ही अपना कर्म यानी कर्तव्य मान बैठा है। ज्ञान नय का पक्षपाती बातें तो बड़ी बड़ी करता है किंतु जीवन में स्वच्छंदता बरतता है, एक जड़ क्रिया में मगन है और दूसरा स्वच्छंदता के पोषण में। अब देखो वह शुभ क्रिया को ही यानी कर्म को ही कर्तव्य मान बैठा है। बहुत लोग ऐसे हैं, अपने मुमुक्षुओं की बात कर रहा हूं, बाहर के लोगों की नहीं, उनको तो पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष का समागम ही नहीं मिला है, तो उन तक तो उसकी गंध ही नहीं है पहुंची है, ख्याल में है ना, उनकी क्या बात करना। अब एक कहते हैं शुभ क्रिया में, ऐसा मानते हैं कि हमें जो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना है, बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना है वो तो शुभ भाव ही रूप है, और उसमें से वो शुद्ध भाव रूप वितराग रूप धर्म तो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। अब इस वाक्य में ये बात पड़ा हुआ है कि करने योग्य तो शुभ भाव ही है और वो तो होने योग्य है, अंतर समझ में आए ना। हम क्या करें, हम तो बस बाहर का उपयोग हटा करके स्वाध्याय करेंगे और फिर तुब्बासाजी करेंगे और ये सब करेंगे, और इसे इसमें से करते ही करते विकल्प से निर्विकल्प हो जाएगा। थोड़ा जी ने रसगुण चिट्ठी में भी लिखा है कि तुम बुद्धिपूर्वक और क्या करेगा, और इनको धर्म ध्यान भी कहा है, आज्ञा बिताय अपाय बिताय विभाग बिताय, मतलब करने योग्य तो वो ही है, पुरुषार्थ तो इसमें ही करना है, कोशिश तो इसमें ही करनी है, वो तो ऑटोमेटिक जिसको होना होगा उसको हो जाएगा, वो तो क्रमबद्ध के अधीन है ना, क्योंकि उसे उसमें सीधा ये नहीं करें, इसे करने योग्य नहीं माने, ये हो भले ही और होगा ही, लेकिन अब उसके लिए कुछ करना है ये इसकी समझ में नहीं आता, और करना है तो बताओ क्या करना है, बताने जाएंगे तो फिर यही बात शुरू हो जाएगी। समयसार पढ़ो, ये कहते हैं गोमरसार नहीं पढ़ो, समयसार पढ़ो, अब बदल के पढ़ो ही, पढ़ो के आगे तो नहीं बढ़े ना, तो कहते अब बहुत पढ़ लिया वहां तक पहुंच गए तो विश्वसंत में चले जाते हैं। इसका मतलब सीधा सच्चा यही है कि खुद ही हम स्वीकार कर रहे हैं कि उस असली धर्म करने के लिए क्या करना हमें पता नहीं है, हम तो यही करते रहेंगे और वो हो जाएगा। गुरुदेव उसे बोलते हैं कि तुम लसन खाते खाते कहे कि अमृत की डकार कहां से आ जाएगी, इस भाषा में इस बात का खंडन करते हैं वो, ये तो लसन है कौन शुभ भाव, अब वो तो अमृत है शुद्ध भाव, अब लहसुन खाते खाते में अमृत की डकार आ जाएगी कि लहसुन की डकार आएगी, गुरुदेव के वचन में ये वाक्य आपको कई दफे सुनने को मिलेगा। और कुछ नहीं है, राई की ओट में पहाड़ है, मैं गुरुदेव श्री में अटोरदमल जी में और लोगों के विद्वानों के भी प्रमाण भी दूंगा, आपको पहले बताता हूं कि वो जो त्रिकाली जो भगवान आत्मा तूने अपने विकल्पात्मक ज्ञान में समझा है, उसमें जो विकल्पात्मक ज्ञान में जो अपनापन और रुचि की जो तीव्रता, वो ही असली पुरुषार्थ है जो तुझे उस भाव तक ले जाएगा। तो ये तो बीच में आएंगे, शुभ भाव आते रहेंगे, और इसका उसका क्या कहा गुरुदेव श्री ने, क्या मैं उदाहरण देता हूँ, टोडामल जी का भी देता हूँ, गुरुदेव श्री का भी देता हूँ उदाहरण, मैंने उनने किया था ऐसा नहीं। गोमठ सार में की टीका लिख रहे थे पंडित टोडामल जी, तो उन्होंने कहा कि जो सम्मा दर्शन की प्राप्ति होगी कायन लब्धि के बाद, तो एक कर्ण लब्धि में जीव कैसे जाएगा? अथवा वो जो लिखा है असंख्य गुण निर्जरा सम्यक दृष्टि श्रावक वृतानंद, तो सम्यक दृष्टि के भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, तो उन्हें किससे? इसका मतलब असंख्यात गुणी किससे, वह बताना तो पड़ेगा गुणनफल किससे करना। अगर मिथ्या दृष्टि से मिथ्या दृष्टि के तो निर्जरा होती नहीं है, तो असंख्य गुणी का होता अनंत गुणी का क्या मतलब उसका? तो उनने कहा भद्र मिथ्या दृष्टि से, तो भद्र मिथ्या दृष्टि से मतलब माने वो उसके पहले भी निर्जरा होती है, ये सिद्ध हुआ ना, कहीं निर्जरा की इकाई स्थापित नहीं हो तो गुणनफल नहीं लग सकता, तो वहां भी निर्जरा होती है। तो फिर प्रश्न हुआ कि वहां काय से होती है, शुद्ध भाव तो है नहीं, वहां तो सुबह भाव है विशुद्ध भाव है, स्वभाव की होती है। ये सारी व्यायाम चलती है कि वो पूरी करण लब्धि का जो परिणाम है वो कौन सा भाव है, शुभ परिणाम है विशुद्ध परिणाम है? शुद्ध तो नहीं है ना, समझ रहे हैं, पहले शुद्ध परिणाम होता ही नहीं है। तो अब ये कहते हैं कि उससे ही हुआ ना फिर करण लब्धि में सम्य दर्शन बाद में, तो हो गया ना तुम्हारा सिद्ध कि शुभ भाव से हो गया विशुद्ध परिणाम से सम्य दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब उसी दिशा में हमें प्रयत्न करना चाहिए ना। तो गुरुदेव समझाते कि नहीं ऐसा नहीं, उससे नहीं हुआ क्या कि उसमें जो विकल्पात्मक ज्ञान में वो तो त्रिकाली ध्रुव का आगम के आधार पर और गुरु के मुख से सुनकर दिव्य ध्वनि सुनकर तो त्रिकाली ध्रुव का निर्णय हुआ था और उसमें जो अपनापन स्थापित हुआ था विकल्पात्मक ज्ञान में उसकी रुचि के जोर से वो काम हुआ है और कुछ स्वभाव से नहीं हुआ। एक गुरुदेव ने अब सहचारी के रूप में वो था इसलिए हम उसे भी कह दें तो वो सहचारी को कहते हैं ना निमित्त की अपेक्षा सहचारी की अपेक्षा वो व्यवहार हो जाएगा, निश्चय नहीं होगा। क्योंकि बीज डालो अशुभ भाव का हो जाए शुद्ध भाव, ये कैसे हो सकता है? तो वो कहते उसकी जो रुचि अंदर विद्यमान थी वो उसमें से हुआ है। क्या भगवान जी गुरुदेव फरमा देना ये, अब उसके लिए कोई प्रसाद नहीं करे, उसे कहा नहीं मान, उसे मानते ही नहीं है भाई, उसके लिए क्या करें? रुचि कर, रुचि कैसे करें? तो फिर आएगा कभी वो त्रिकाली ध्रुव का स्वरूप समझ तो असली व्यवहार तो वो होगा, क्योंकि विकल्पात्मक ज्ञान में उसका निर्णय होगा और उसमें अपनापन भाषित होगा तब तो उसमें से रुचि की तीव्रता बचेगी। अभी तो पता ही नहीं है मूल मुद्दे की बात तो कैसे होगा। इसलिए रहस्यमूल चिट्ठी में कि जो मैंने वो किताब निकली ना रहस्य रहस्यमूल चिट्ठी का, उसके अंतिम तीन व्याख्यानों को बहुत बारीकी से पढ़ो तो तुम्हें ये बात समझ में वहां आएगी। वैसे तो शुरू से ही पढ़ना चाहिए तब वहां पहुंचोगे तो ज्यादा बनेगा, लेकिन आपको जल्दी देखने की इच्छा हो तो अंतिम तीन व्याख्यान होने पाओ। सचमुच मुक्ति के मार्ग में हमें क्या करना, पुरुषार्थ करना है। असली वो पुरुषार्थ क्या है और बाकी ये सब चीजें बीच में आने की चीजें हैं, बीच में आती हैं, आए बिना रहती नहीं है, और वो भी कब के बीच में काल हो तो, लंबा काल हो तो और ज्यादा। महीना भर के उपवास कब आएंगे? जब महीने भाव भर का अंतर होगा तो आएंगे ना। यदि वो तीन निर्वाधि सम्य दर्शन हो गया, शुद्धोपयोग हो गया, तो तीन ही उपवास से ज्यादा तो नहीं होंगे ना, और एक दिन में ही हो गया तो एक ही होगा, और आधे दिन में हो गया तो आधे ही होगा। अभी क्या पता कि भरत चक्रवर्ती जब दीक्षा लेने गए थे उन्हें कितने पहले रोटी खाई थी, हो सकता रोटी खा के ही उठे हों और उसी वक्त उनको दीक्षा लेने का भाव आ गया। अरे ऐसा लिखा तो कहीं है नहीं, हो सकता है ना, अंदर में भाव चलता रहता है और बस किसी ने व्यंग कर दिया, पत्नी ने ही कर दिया वैसे दीक्षा लेने का भाव आ गया। अंदर तो परिपक्वता थी, उससे नहीं आता है, अंदर से पूरी तैयारी थी उपादान में, और निमित्त तो कुछ भी बन सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। वो पत्नी का व्यंग भी बन सकता है और मक्खी का मर जाना भी बन सकता है, लेकिन वो अंदर की तैयारी हो तो। तो वो असली पुरुषार्थ वो है। ये बात अपने पाप अधिकार समझाना चाहते हैं। गुरुदेव भी कह रहे हैं, देखो अपना आगे पढ़ते हैं, जिनको अंतरंग में चैतन्य स्वभाव में एकाग्र होने की ओर झुकाव तो हुआ नहीं, झुकाव तो हुआ नहीं, केवल बाहर बाहर से ज्ञान की बातें करते हैं बस, इससे भिन्न, इससे भिन्न, राग से भिन्न, फरा में केवल ज्ञान से भिन्न, वे नियम से मिथ्या दृष्टि है। तथा जो स्वभाव की दृष्टि की एकाग्रता का विचार तो करते हैं, किंतु जिन्होंने स्वरूप का प्रत्यक्ष आस्वाद नहीं किया, वे भी सम्यक के सम्मुख मिथ्या दृष्टि जीव हैं। यह दो प्रकार के जीव लिए हैं, एक स्वराग की क्रिया में धर्म मानने वाले और दूसरे ज्ञान की मात्र खोरी बातें करने वाले। मैं ये कहता हूं कि जो दूसरे प्रकार के लोग हैं ना, ये कौन है? ये निश्चयावासी है कि व्यवहारावासी? ऊपर ऊपर से तो लगते हैं निश्चयावासी, लेकिन मैं तो कहता हूं कि सब व्यवहारावासी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नए प्रकार का व्यवहार विकसित कर लिया है। वो पूजा पाठ वाला व्यवहार छोड़ दिया है और तत्वतर्ता नाम का व्यवहार शुरू कर दिया है, और तत्वतर्ता के नाम पर गप्पे ठोकते हैं। तत्व की खबर नहीं, तत्वतर्ता कैसे हो? ऐसा नहीं समझना, मैं बहुत बहुत स्पष्ट है, संबंध सब नहीं है ना। तो बहुत काल तक तत्व की सही जानकारी रहे और व्यवहारिक प्रतीति रहे और समय दर्शन नहीं हो, ये संभव नहीं है। थोड़ा काल जा सकता है तो हम क्या कहेंगे? तत्व की खबर नहीं है तो तत्व ऐसा क्या वो कोरा गाल बजाना नहीं है, क्या है? इसलिए मैं कहता हूं वे सब व्यवहाराभासी ही हैं, उनका क्रियाकांड नए तरीके का हो गया है। सब व्यसनी है, घबराना नहीं। व्यसन जानते किसे बोलते हैं? मैं सात व्यसन वाले व्यसन की बात नहीं कर रहा हूं। व्यसन शब्द का अर्थ समझते हैं? किसी चीज की आदत पड़ जाना, वो अच्छी चीजों की भी पड़ सकती है। एक छंद आता है, विद्या व्यसनम व्यसनम केवल हरिपाद सेवनम व्यसनम। कई व्यसन बुरी चीज है, यदि कोई अच्छा व्यसन है तो विद्या का व्यसन, तत्व का अभ्यास और जनन भगवान के चरणों की सेवा, ये अच्छे व्यसन है। इनको भी व्यसन कहते हैं। व्यसन माने बुरे नहीं होते, व्यसन माने अच्छे नहीं होते, व्यसन माने तो आदत होती है। किसी चीज की हमें आदत पड़ गई, अरे घूमने की आदत पड़ गई कि सुबह घूमने में ना नहीं जाए तो ऐसा लगता है जैसे आज कुछ अधूरा अधूरा रह गया है कुछ, है ना? तो वो भी वो घूमने का एक व्यसन है। क्या सभी सभी व्यसन सात व्यसनों जैसे छोड़ने लायक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो व्यसन तो ऐसा ही, उसको हरेक की कुछ आदतें हो जाती सुबह से शाम तक ऑटोमेटिक। तो एक आदमी दिनचर्या के बड़े पक्के हो जाते हैं, और रात के 2 बजे सोए तो भी 5 बजे उठ जाएंगे, और शाम को 8 बजे सोने वाले भी नहीं उठ पाएंगे। और उन्हें 5 बजे तो बहुत महान होंगे वे, तो उन्हें 5 बजे व्यसन हो गया है, 5 बजे उठने की आदत हो गई है। हम तो नहीं मानू कहाँ महानता घुस जाती है हमें, जरा अभी कुछ थोड़ा सा हटके हुआ इस जगत से और हमें अपने में महानता का भ्रम हो जाता है। वो तो कहते ये व्यवहारिक क्रियाकांड है ना, और उस प्रवृत्ति में वो रोजाना करेगा, उस दायित्व के स्वभाव रोजाना करेगा, और ऐसी उसकी क्रिया चलती रहती है। जिनको अंतरंग में चैतन्य स्वभाव में एकाग्र होने की ओर झुकाव तो हुआ नहीं, और केवल बाहर बाहर से ज्ञान की बातें करते हैं, वे नियम से मिथ्या दृष्टि हैं, तथा स्वभाव में दृष्टि की एकाग्रता का विचार तो करते हैं, किंतु जिन्होंने स्वरूप का प्रत्यक्ष आस्वाद नहीं लिया है वे भी सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि, वे भी मिथ्या जी, ये सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ये कितनी बारीक है कि एक समय पहले थे मिथ्या दृष्टि और एक समय बाद सम्यक दृष्टि, तो पहले कोई ना कोई खाते में तो डालने ही पड़ेंगे ना, तो निश्चयावासी व्यवहारावासी उभयावासी में तो डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि इनमें तो वे स्थूल भूलें होती हैं, वे स्थूल भूल तो रही नहीं। तत्व के निर्णय में आगम के आधार से, गुरु के मुख के आधार से सही हो गया है, समझे ना। यहाँ दो प्रकार के जीव लिए हैं, एक स्वराग की क्रिया में धर्म मानने वाले और दूसरे ज्ञान की कोरी बातें करने वाले। अरे आप देख लो भाई साहब, आपका नंबर समय नंबर किस में आता है, हमारा आपका सबका, क्यों साहब राजकुमार सम्मेलन है साहब, तो बस फिर कहीं ना कहीं होंगे ही ना, तो चार प्रकार के हैं ना, उनमें कहीं ना कहीं तो होंगे ना, विभाराभासी निश्चयाभासी उभयाभासी, क्यों, और सम्यक्त के सन्मुख, तो सम्यक्त के सन्मुख होंगे तो अंतर्भूत में सम्यक्त होगा, तो सम्यक्त के सन्मुख होंगे ना, और अंतर्भूत के पहले सम्यक्त होने के बाद अंतर्भूत के पहले की बात अपन कर रहे हैं, तो सम्यक्त के सन्मुख तो है ही नहीं, तो उन तीनों में से कहीं ना कहीं खपेंगे, उनमें से किसी ना किसी का जोर होगा, अब मुफ्त की लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी ये मानते हैं लगभग, कोई एकाद नहीं मानते हो और तुम्हें उनका कोई अपमान नहीं करना चाहता हूं, नहीं साहब हमें सम्मान दर्शन तो नहीं है। पहले एक जमाना ऐसा था कि सम्यक दृष्टि है ऐसे मानने में बहुत गौरव हम अनुभव करते थे, और अब ऐसा आ गया है कि इतने सम्यक दृष्टि हो गए बिना सम्यक दर्शन के, कि अब हम सम्यक दृष्टि है एक कहने नहीं, घबराहट सुनती नहीं, नहीं नहीं हमने 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 कि गाली दे रहे, कि समय से गाली दे रहे, कितना क्यों घबरा रहा है, नहीं है तो नहीं है मान, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो घबराहट है वो तो ऐसा लगता है तेरे पे कोई इल्जाम लग रही है, तूने किसी की माँ बहन को छेड़ा हो, ऐसा कुछ किया हो तो ऐसा अपराध लगता है। मैंने देवलाली में कहा था ना अभय जी आपसे, क्या कहा था कि साहब लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब अपने को नंबर एक मानते हैं, मैंने कहा हाँ मानते हैं, बोलो क्या कहना है, पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी जितनी हमने गहराई से सुनी है और बार बार उसे पढ़ी है और उसे अपनी लेखनी में बार बार कोट किया है, यदि हमने 14,000 पेज लिखे हैं तो उसने 3,000 पेज गुरुदेव के कोटेशन निकालोगे तो 3,000 पेज निकलेंगे अभय कुमार जी, 14,000 पेज होंगे, और जिंदा लोगों में पूज्य गुरुदेव श्री के जो अन्यायी लोग हैं उनमें जिंदा लोगों में, मैं झंझट में नहीं पढ़ना चाहता, वो सबसे अधिक मंगल आशीर्वाद जिसे प्राप्त हुआ था, हम ऐसा मानते हैं कि उसमें हम नंबर एक हैं, बोलो जिसको प्रद्वंदता करनी हो आ जाओ, बताओ तुमने कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, कितना सोचा है, कितना किया है, रोजाना कितने घंटे इसमें लगाए हैं, लगाओ अभी भी नंबर आपको दे देंगे, क्या क्या नंबर होगा, क्या नंबर, किसका नंबर, कैसा नंबर, देवलाली में कहा था मैंने, बोलो। अरे करो ना इसमें होड़, 5,500 पेज बड़े दादा ने अनुवाद किया गुजराती से प्रचुन रत्न करता, और मैंने उसका संपादन किया। अक्षर अक्षर कम से कम 3-3 दफे पढ़े, और फिर समय साल अनुशीलन लिखने के लिए फिर 3-3 दफे पढ़े, तब उनमें से वो इतने ये कोटेशन निकाले, इसके 10-20 पेज होंगे, तो 3-3 दफे पढ़े हो जब एक कोटेशन निकाला है गुरुदेव का। किसी ने किया हो तो बताओ ना। लेकिन ये बहुत गलत बात है, हमने तो आज तक किसी से कहा नहीं कि हम नंबर एक हैं। हम ये मानते ही नहीं, हम तो ये मानते हैं कि एकमात्र हम ही हैं और दूसरा कोई है ही नहीं। और ये साथ एक नंबर बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, बनना तो वो चाहे जो हो ही नहीं। हमें किसका सर्टिफिकेट चाहिए? इसकी गणना कब हुई थी और कौन हमारे साथ प्रतिद्वंदी था? जबरदस्ती लेना नहीं देना नहीं, आ बैल मुझे मार। आप ये मान लो कि हम नहीं है एक नंबर, तो बातचीत शुरू हो सकती। करना चाहिए बेवकूफू को है तुमसे बातचीत, अरे शर्त के साथ बातचीत होगी। और यदि हम एक नंबर नहीं है और नंबरीकरण हुआ है तो बताओ फिर कौन है वो एक नंबर पे? तो हमारा नंबर बता दो, हम तो नीचे से एक नंबर पे आने को तैयार हैं। लेकिन उन माइके लालों को सामने लाओ तो वे बताएं कि हमें एक क्वालिटी है और इसलिए हमारा नंबर ये है। हमने कल कह दिया कि हमारे अभय जी फर्स्ट बैच के तो हैं ही और नंबर एक के हैं, हम उन्हें क्यों छोड़ सकते? कहा कि नहीं कहा, बोलो अब करो कोई जायदाद। एक दिन कह दिया था कि शांति जी को सबसे बड़ा भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि वे अमर चंदाचार्य को आत्मख्याति को पढ़ाते हैं। ये तो हमारे, हम देखते हैं जो हमको लगता है तो कह देते हैं, ये भी हमारी इससे थोड़ी है कोई ऐसी बात है, अंदर से फीलिंग होती है। कोई ट्रेनिंग नहीं देता, कोई सोच सोच के नहीं कहता, एक सेकंड पहले भी नहीं सोचते, ऐसा है ना? क्या मतलब? अब ये भी एक मतलब, जैसे मिनिस्ट्री बनती है ना तभी करके, मैं कहता हूं अपने को पहले इस बात की मीटिंग करनी चाहिए कि नंबर नक्की करनी चाहिए। तो ऐसा करो अभय कुमार जी, एक एक प्रतियोगिता निकालो सारे देश में कि पूज्य गुरुदेव श्री के अन्नाइयों में 10 लोगों के नाम लिखिए और उन्हें नंबर भी दीजिए 1, 2, 3, 4, और 5.5 लाख लोगों से वो फार्म भरवाओ, समझ ली? फिर देख लेना किस किस का नाम आता है, कौन कौन से नंबर पे आता है। जनमत लेना है ना, जनमत ले लो। ये जनमत से तो होते नहीं है, क्यों? जरा भी अपने गरेबान में हाथ डाल के देखें कि उनका नंबर कहीं आएगा क्या नहीं आएगा। काल्पनिक प्रश्न खड़े करना, काल्पनिक झगड़े खड़े करना, लेना नहीं देना नहीं। अरे भैया, कोई के गुरुदेव फरमाते हैं कि हम उनसे तो अच्छे, कि किसी से अच्छे होने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों? हमें तो अपने, हम अपने लिए सबसे अच्छे, क्यों? अपने लिए, तुम अपने लिए सबसे अच्छे, क्योंकि तुम्हारे आत्मा के आश्रय से तुम्हारा कल्याण होगा और हमारे आत्मा के आश्रय से हमारा कल्याण होगा। क्यों? तो हमारा आत्मा हमारे लिए सबसे अच्छा है कि नहीं है? अरे सबसे अच्छा नहीं राजकुमार, एकमात्र वो ही है जिसके आश्रय से हमें पर्याय में धर्म की प्रगट होगा, दूसरा कोई नंबर वंबर है ही नहीं। तुम्हारा तुम्हारे लिए है, हमारा हमारे लिए है। क्यों साहब, अभी कितने कितना बढ़िया झगड़ा निपट गया एक सेकंड में। यहां दो प्रकार के जीव लिए हैं, एक सुवराट की क्रिया में धर्म मानने वाले और दूसरे ज्ञान की कोरी बातें करने वाले। एक सुवराट को अनेक क्रियाओं में रुककर मिथ्यात्व सहित होने से संसार में डूबते हैं, सुवराग सुक्रिया में गुण, और दूसरे पुरुषार्थ रहित प्रमादी होकर विषय कसार में स्वच्छंद बरतते हुए संसार में डूबेंगे। दोनों ही डूबेंगे। अब कौन डूबेगा पहले, हम डूबेंगे नहीं पहले हम डूबे? अब उसमें भी हमें होड़ करना है, हमें तो जीतना है। हम तो तुमसे आगे ही रहेंगे, तुम तीसरे नरक जाओगे तो हम चौथे जाएंगे। क्या है यहाँ कहते हैं कि जो जीव ज्ञान रूप प्रणमता हुआ कर्म नहीं करता। देखो ज्ञान 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 की बातें नहीं, ज्ञान रूप प्रणमता हुआ का अर्थ क्या है राजकुमार से नहीं पूछूंगा क्योंकि वो नहीं था। बोलो पंडित तुम तो थे ना पांच छह दिन से, क्या है ज्ञान रूप प्रणमता हुआ का मतलब क्या है? हमने दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रणमता, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र में राजेंद्र बाबू शुभ भाव रंच मात्र नहीं है, विशुद्ध भाव भी नहीं है, कोई नए नए नाम हो तो सारे नाम कुछ नहीं, न सम्य दर्शन में न सम्य ज्ञान में न सम्य चारित्र में। शुभाशुभ भाव मोक्ष मार्ग नहीं है, और सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग क्लियर लिखा ना। तो ज्ञान का प्रणमन माने ज्ञान रूप प्रणमन माने सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रणमन है ना। यहाँ कहते हैं कि जो जीव ज्ञान रूप परमता हुआ कर्म नहीं करता, कर्म माने भी स्वभाव, वह भव समुद्र में तर जाता है। ज्ञानी कर्म नहीं करता, इसका अर्थ यह है कि अनुभव के काल में ज्ञानी के बुद्धि पूर्वक राग नहीं होता, और ज्ञानी को वर्तमान कमजोरी के कारण जो राग होता है उस समय बुद्धिपूर्वक नहीं अबुद्धिपूर्वक, उसका भी वह करता नहीं है, उसका करता नहीं है और ये करता नहीं है। क्या ये तो करता नहीं है और उसका करता नहीं है, क्या फर्क है? करने के विकल्प पूर्वक करता नहीं है और उसमें उस जो रह जाता है उसका कर्ता बनता नहीं है, उसका उसकी उसमें उसकी कर्तृत्व बुद्धि नहीं है ना। अर्थात उसके अभिप्राय में परके या राग के कर्तृत्व भाव का अभाव हो गया है। अभिप्राय में, अभिप्राय के लेवल की बात है, जो मैंने कल कह दिया था कि ये क्रिया के लेवल की बात नहीं है। पर में व राग में अब उसके एकत्व और स्वामित्व तो नहीं रहा, वैसे इतनी बात है। इस कारण अब वह कर्म का कर्ता नहीं है, राग के वशीभूत होकर वह मिथ्यात्व में नहीं जाता। इस तरह निरंतर स्वरूप में उद्यतशील रहकर और प्रमाद रहित होकर संसार से तर जाता है। जो स्वरूप में झुकता है उसमें लीन होता है, उसी में उद्यमवंत रहता है, प्रयत्नशील रहता है, वह मोक्ष मार्गी है। तथा जो स्वरूप से विमुख है वह मिथ्या दृष्टि है, संसार समुद्र में डूबने वाला है। इतना स्पष्ट शब्दों में पूज्य गुरुदेव श्री ने ये अंतिम कलश का और निष्कर्ष की बात कही है। देखो अब अपन निष्कर्ष निकाल रहे हैं। इस प्रकार इस कलश में यह कहा गया है कि कुछ लोग आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जाने बिना, आत्मानुभव किए बिना, वृत्तोपवास आदि क्रियाएं करके ही अपने को धर्मात्मा मान लेते हैं। ऐसे जीव कर्म नय के पक्षपाती हैं, एकांती हैं, इस कारण वे संसार सागर में डूबने वाले ही हैं। डूबने वाले से तो कोई समुद्र होगा उसमें वैसे डूब जाएंगे, अरे संसार में रहेंगे, उन्हें मोक्ष नहीं होगा भाई, इतनी सी बात है। कहाँ रहे, स्वर्ग में रहे नरक में रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। देखो इसमें भी एक और गहरी बात बताता हूँ, बात तो सबको आना चाहिए ज्ञान में, कि साहब पाप करेगा तो नरक में रहेगा और पुण्य करेगा तो स्वर्ग में रहेगा, यही है ना, लेकिन मोक्ष मार्ग में नहीं, ये नहीं है। पाप करेगा तो नरक में रहेगा ऐसा नहीं है, पुण्य करेगा तो स्वर्ग में रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि नरक में और स्वर्ग में रहना तो सुनिश्चित है। जितने काल जहां रहना है उसके हिसाब से वह वो करेगा, उस रूप पढ़ने में होगा। क्या समझ में आया, यदि नित्य नमोद से कोई जीव निकला ना तो सब नक्की है, दो इंद्री के भव इतने, तीन इंद्री के भव इतने, चार इंद्री के इतने, असैनी पांच इंद्री के इतने, फिर मनुष्य पर्याय में कितने 48 भव हैं, इतने स्त्री के, इतने पुरुष के, इतने नपुंसक के हैं, फिर वो लौट करके ऐसे ऐसे करके और वहीं का वहीं यूं परिवर्तन पूरे करे, सब सुनिश्चित है बिल्कुल। तो पुण्य करेगा पाप करेगा तो स्वर्ग में रह जाएगा, कि जहां उसका जाना सुनिश्चित है उसके अनुसार उसके भाव होंगे, उसमें भी कर्तव्य तो उसका नहीं है, मैं ये करूं ये नहीं करूं ऐसे कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, तेरे विकल्प से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या उसमें भी तू आजाद नहीं है, इसे तो आजादी चाहिए, और इस वस्तु के स्वरूप में इसे बंधन दिखता है। सबने की अज्ञानी जनों को इसमें अनंत आजादी दिखती है, बोलो अध्यात्म कैसे, तुम्हें सब करने से छुट्टी मिल गई ना, अनंत आजादी हो गई ना, और अभी तुम्हारा तुम पे छोड़ दिया, ये करो ये नहीं करो, ये करो ये करो ये नहीं करो, देखो दो बात है, आज सब्जी क्या बनेगी और पकौड़े मंगोड़े क्या बनेंगे, अब नक्की करना है तो माथा तीन से ले आती है, और नक्की कर दिया, फिर पर्दा छपा दिया, आगे बनने हैं कले बनने हैं परसने बनने हैं, बस तो कुछ माथा नहीं है, बस खत्म, बस दे बनेंगे देख लेना, बस खत्म। क्यों कावड़ा जी, अपने घर में बड़े बड़े देख लेना, वहां जाके देखने की जरूरत नहीं क्या बना है, 8 दिन पहले आपको पता लग गया था, आपने थोड़ी नक्की किया, पता तो लग गया था ना, कितने निराकुलता है, सब बदल जाएगा, पता चल जाए तो बढ़िया, नहीं चल जाए तो बढ़िया, अनंत काल पहले सब नक्की है। वो जो मीनू नक्की किया है वो किसने किया था, पीयूष ने क्या शांति ने, क्यों नहीं था, मैंने बहुत अच्छा है, हाँ हाँ, अरे तुमने नहीं किया, वो तो भगवान महावीर के ज्ञान में आ गया था, वो महावीर ने नहीं किया, आदिनाथ के ज्ञान में आ गया था, हैं? समझ गया ना, तुम क्यों घबराते हो, तुमने क्या किया, समझ गया ना। देखो कुछ लोग, दूसरे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आत्मा की बातें तो बहुत करते हैं पर आत्मा के अनुभव उन्हें नहीं होता, सदाचारी है नहीं होता, कहा आत्मा के अनुभव बिना ही स्वयं को ज्ञानी मान लेने से वे लोग स्वच्छंद हो जाते हैं, प्रमादी हो जाते हैं। भूमिका अनुसार होने वाले सदाचरण की भी उपेक्षा करते हैं, अब ऐसा नहीं है कि नहीं उसे भी नहीं पालते हैं, अरे वो तो नक्की था, बस वे उस दशा को अच्छा मानते हैं, एक खतरनाक है। ऐसे लोग ज्ञान नये के पक्षपाती एकांती हैं, इस कारण संसार में भटकने वाले हैं, और ज्ञानी धर्मात्मा तो आत्मज्ञानी होते हैं, आत्मानुभवी होते हैं, और भूमिका अनुसार उनका जीवन भी पवित्र होता है, सदाचारी होता है, ऐसा होने पर भी वे अपने उस सदाचरण को भूमिका अनुसार होने वाले स्वभावों को धर्म नहीं मानते, उनकी दृष्टि में धर्म तो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल परिणमन ही है। इस प्रकार यहाँ पुण्य पापाधिकार समाप्त हो रहा है। देखो सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस शुभाशुभ भाव में प्रयत्न करना और शुभाशुभ क्रिया करना ये सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र का कारण नहीं है। तो सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र तो मुक्ति के कारण है। अब ये कारण के कारण की खोज है, क्योंकि हमको तो ये चाहिए ना, हमारी समस्या तो ये है कि सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र चाहिए। तो इसका कारण कोई ने पूजा पाठ को, कोई ने स्वाध्याय को, कोई ने तत्व चर्चा को, जिस जिस क्रियाकांड को जिसने मान रखा है वो उस क्रियाकांड में लगा रहता है और फिर भी हजारों वर्ष तक नहीं होता है। इसका सीधा सच्चा अर्थ ये नहीं है कि ये उसका सही मार्ग नहीं था, ये मार्ग नहीं था, ये अर्थ है कि नहीं है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी की जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है कि 99% मुमुक्षुओं को अभी यही पता नहीं है कि सम्मा दर्शन क्या है और सम्मा दर्शन आत्मानुभव क्या है और वो आत्मानुभव कैसे होता। ये आपको लगता होगा कि मैं सबका अपमान कर रहा हूं, लेकिन ये तो मेरी फीलिंग है, उसका जिम्मेवार मैं हूं, उसका पुण्य पाप मुझे बनेगा। आपको तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप उस पर एक गंभीरता से विचार करें। तो टोडामल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी को गहराई से पढ़ें तो आपको भी ये बात निर्णय पर पहुंचेंगे आप कि मैं अभी तक जो समझ मुझे चाहिए है, जो अनुभव मुझे चाहिए है, मैं तो इसको मानता ही नहीं था जो इसमें लिखा है और जो उसकी विधि में विधि भी ये नहीं मानता था। ये आपको अंदर से फीलिंग होगा, ईमानदारी से कम अपने प्रति ईमानदार बन, दूसरे के प्रति मुंह से मत निकालना, तो उसमें इज्जत आड़े आ जाती है। अपने ही मन में गहराई से ये फीलिंग करना दादा कि ये जो इसमें लिखा है, क्या मैं अनुभव ऐसा ही को मानता था, क्या यही प्रक्रिया को मैं मानता था, क्या इसी को पुरुषार्थ में जानता था, एक दफे अंदर से मिलान करके देखना। यदि आपको मिलान करने पर बहुत अंदर में एकांत में कमरा बंद करके कोई को पता न लग जाए, ये लगे कि सचमुच मैं इसको नहीं जानता था, तो समझ लो आधा मोक्ष हो गया आपका। क्यों? क्योंकि फिर जो उसी मार्ग पर आप नहीं लगे रहेंगे ना, जो मार्ग यहाँ बताया है उस पर लगेंगे। अभी तो उसी पर लगे रहेंगे तो अनंत काल तक लगे रहते उसी लेन पे, उसी लेन पे मनुष्य अपने निकल जाता है ऐसी बातों बातों में बस, और उसी लेन पे लगे रहते। जैसे मैं थोड़ा नमूने की बात कहता हूं कि आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष दिखाई देता है, क्या अब हम देखते हैं बिल्कुल ऐसा दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल आत्मा क्लियर दिखता होगा साफ, जैसे केवल ज्ञान में दिखता है अथवा जी हमें आंख में से दिखता है, रूमाल साफ दिख रहा है, सब बिल्कुल साफ दिखता होगा। उनमें टोडामल जी ने लिखा कि ये रूमाल तुम्हें अपनी आंख से जितना साफ दिखता है, अनुभव में आत्मा ऐसा भी नहीं दिखता। बोलो क्या कह रहे हो तुम, तो जग मांगते हो 100 कोटि की सूर्य की प्रभा और ऐसा ऐसा हो जाएगा, एकदम ये हो जाएगा, गलगलिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें लिखा है क्या कि ये रूमाल तुम्हें जैसा दिखता है अंदर अनुभव के काल में छायक सम्मा दृष्टियों को, आदिनाथ भगवान को भी ऐसा नहीं दिखता था जैसा ये रूमाल तुम्हें दिखता है। कोई बात याद आ रहा है आपको रहस्यपूर्ण चिट्ठी का? उसमें लिखा है कि वो इंद्रिय प्रत्यक्ष भी नहीं है, जैसा इन 5 इंद्रियों से हमें बाह्य पदार्थ आंख से प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इनमें जितनी निर्मलता है उसमें इतनी भी निर्मलता नहीं है, इसलिए इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। कितनी ताकत से उसे परोक्ष सिद्ध किया है, कौन से स्वानुभव प्रत्यक्ष को, اب تم سمجھ رہے ہم اندر جائیں گے تو صاف صاف دکھائی دے گا. اب اندر میں جو صاف صاف دکھائی دے گا وہ تو کوئی پودگلک چیز ہوگی, اب اس کو تم آتما سمجھ لو گے. پڑھ لیا ہم نے کوٹی سوریہ سم پربھا, وہ کروڑ سوریوں کے سمان اس کی پربھا ہے, وہ دیکھ کر کے آنکھیں چمچمنے لگ جائیں گے. کہ میں تو اندر میں دیکھا ایک دم اجالا اجالا پرکاش پرکاش پرکاش. ارے مورکھ, پرکاش تو پودگل کی پریا ہے, بھگوان آتما میں پرکاش نکاش نہیں ہوتا. کہ لکھا تو ہے اس کا ارتھ گیان ہے, اجیلا نہیں ہے. اور تم پرکاش کا ارتھ اجیلا سمجھتے. جیسے تم لڈو منہ میں رکھتے ہو نا, جو تمہیں بہت پریہ ہو ادھیاتم وہ چیز, اس کا جیسا مزہ آتا ہے نا سواد, ایسا انوبھو میں آتما کا ایسا بھی سواد نہیں آتا, اتنا صاف نہیں آتا. پانچ اندریوں پہ لگاؤ, مانس پرتیکش بھی نہیں ہے. تم ابھی آنکھیں بند کر کے اس سپنے میں تو دیکھتے ہو, وہ نہیں. کچھ لوگ دن میں بھی سپنے دیکھتے ہیں, کہتے نا میں نے 50 سال پہلے ایک سپنا دیکھا تھا اور آج وہ ساکار ہو گیا ہے, میں تو دھن ہو گیا. ارے وہ کلپنا ہے تیری, کیوں تو کلپنا میں تو جو تم نے دیکھی وہ تو ہے ہی نہیں چیز وہاں. وہ کہتے جیسا وہ کلپنا میں صاف صاف دکھتا ہے نا, اسے جس نے تاج محل بنایا ہے نا اس کاریگر کو جتنا صاف صاف دکھتا ہے وہ اتنا بھی صاف آتما انوبھو میں نہیں دکھتا. اس میں تو نہیں دکھتا کتنا, یہی بتایا ہے کیسا دکھتا تو ہے, باتیں ہی نہیں کرتے. وہ تھا نا وہ اس دن اپن مورتی کا اپن نے کیا کیا تھا, وہ مورتی سدھی پتھر سدھی, تو وہاں پتھر رکھا تھا, وہ ایک مورتی لایا تھا وہ ساتھ میں اور بغل میں مورتی رکھی تھی اپن نے یہاں, اور وہ کہتا تھا اس پتھر میں سے جو مورتی بنے گی وہ ایسی بنے گی. تو اپن کو تو بنی بنائی مورتی دکھ رہی تھی, لیکن اس کاریگر کو اس پتھر میں ویسی مورتی دکھ رہی تھی. کتنی صاف صاف دکھ رہی تھی, اتنا بھی آتما انوبھو میں اتنا صاف بھی نہیں دکھتا ہے. پڑھو تو آنکھیں بند کر, آتما آنکھ کھول کے بھی نہیں دکھتا, آتما آنکھ بند کرنے سے بھی نہیں دکھتا, کیونکہ یہ آتما یا تو آنکھ کھولنے کے وکلپ میں الجھا رہتا ہے یا آنکھ بند کرنے کے وکلپ میں الجھا رہتا ہے. کیا اپنے بھگوان کی مورتی کی آنکھ کیسی ہوتی ہے, صاف ہے اپنی بند, سیتامبروں کی کھلی, اپنی بند نہیں ہوتی ہے, اپنی بھی کھلی ہوتی ہے ان کی بھی کھلی ہوتی ہے, لیکن اپنی ہوتی ہے ادھ کھلی اور ان کی ہوتی ہے پوری کھلی, کیونکہ پوری کھلی آنکھ دوسروں کو دیکھنے کی پرتیک ہے اور بند آنکھ سو جانے کی پرتیک ہے. نہ بند ہے نہ کھلی ہے, تو پھر کیسی ہے, کیا کریں ہم, آنکھ بند رکھیں کہ کھولیں, کہ نہیں ادھ کھلی, کہ ادھ کھلی بھی نہیں تو مر جائے کیا. کہ تم آنکھ کا کچھ کرے ہی مت, سمجھ, نہ کھول کے رکھ نہ بند کر کے رکھ نہ ادھ کھلی رکھ, اور تم تو آتما میں چلا جا تو آنکھ کا کیا ہوگا, جیسی رہنی ہوگی ویسی رہ جائے گی, اور تیرے آتما کے انوبھو میں کوئی بادھا نہیں پڑے گی. لیکن 99.9% وہ اردھون میلت ہوگی, ادھ کھلی ہوگی. کیوں, دیکھو ذرا سنو, ہمارے پاس کان بند کرنے کے لیے کوئی کباڑ نہیں ہے, کوئی کباڑ پلین میں جاتے ہیں تو روئی روئی ٹھسواتے ہیں بھی. ویسے کوئی آٹومیٹک نہیں ہے. کیوں؟ ناک بند کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سادھن نہیں ہے. اس پر سے نندری کو بند کرنے کا ہمارے پاس کوئی سادھن نہیں ہے. رسنا کو بھی بند کر تھوڑا کر سکتے ہیں ایسا امید کی. کیوں؟ اور آنکھ کو پھر ہمارے کباڑ لگے ہیں ہم کھول لگا لیتے ہیں. تو کان کا کیا کرنا راجکمار؟ کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کریں. ناک کا کیا کرنا؟ کچھ ہے ہی نہیں تو کیا کریں. اب آنکھ ہے تو وکلپ کھڑا ہوتا ہے کیسی رکھیں. کہتے بھیا جیسی بار رہنے دو, تم اس کے بارے میں کچھ وکلپ مت کرو. یہ ایسی آنکھ ہوتی ہے لیکن وہ 99% کیسی ہوتی ہے؟ اردون ملت ہوتی ہے. کیونکہ دیکھو میرا یہ ہاتھ ہے, مجھے ایسا رکھنا ہو تو نرنتر اس پہ دھیان رکھنا پڑے گا. یہ ہاتھ ایسا نہیں رہ سکتا, نیچے گر جائے گا. دھیان ہٹتے ہی گر جائے گا کہ نہیں؟ ایسا ہاتھ نہیں. بہت سے لوگ دھیان کرتے نا ایسا ہاتھ رکھ کر کے انگوٹھے پہ کھڑے ہو کے, وہاں دھیان جائے بنا ایسا نہیں رہ سکتا. تو پھر کیسے رہ سکتا ہے؟ جیسے باہوبلی کے ہیں ویسے رہ سکتے ہیں. ہمارا دھیان نہیں جائے تو بھی ہاتھ ایسے نیچے رہ سکتے ہیں. سمجھ میں آئے نا؟ تو ہم نے بھی ایسے رکھو نہیں. جب ہم اس کا کچھ نہیں کریں اور جیسے میں بھی جیسے رہ جائیں ویسے رہنے دیں, تو رہنے دیں کہ رہنے بھی مت دو. کیا کہہ رہے؟ کیونکہ تم تو الجھے ہی ہو نا, کبھی رہنے دے رہے کبھی نہیں رہنے دے رہے. تم اس کے بارے میں کچھ سوچو ہی نہیں نا. کیوں سوچو نہیں, بولو نہیں, کرو نہیں. ماں چٹھئی ماں جمپئی ماں چنتئی. جگت کے پرن میں جگت جیسا ہونے دو نا, تمہیں کیا لینا دینا ہے؟ تم تو اپنے آتما میں جاؤ نا. ہم تو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تو وہی آپ کے گیان کا گیہ بنا رہتا ہے. کیونکہ اس میں دھیان رہے بنا, گیان رہے بنا وہ ویسا رہ نہیں سکتا ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں بھائی کہ وہ بھگوان آتما کا انوبھو کرنے کی کیا ودھی ہے. تو آپ کو کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آ جائے گا ریسپون چٹھی سے کہ جو ہم سمجھ رہے وہ نہیں ہے. اور یہ سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے تو اس سے بڑا بھاگ کوئی دوسرا ہوگا نہیں. میں سب بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری لکھی کتاب ہم رہسپون چٹھی کا پڑھیں, لیکن مجھے رہسپون چٹھی کی مہیما آئی اس لیے میں نے آپ کو بات کہی. مجھے وکلپ ہے کہ آپ اس کو جانیں اور آپ کو بھی آتما کے انوبھو کا کوئی راستہ ملنے کا راستہ کھلے تو اچھی بات ہے.